नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9 Not B के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, स्टीवन जॉनसन की पुस्तक इमर्जेंस, द कनेक्टेड लाइफ्स ऑफ एंट्स, ब्रेन्स, सिटीज एंड सॉफ्टवेयर, 2001 में प्रकाशित एक लोकप्रिय विज्ञान और सांस्कृतिक विश्लेषण की कृति है। इसका केंद्रीय प्रश्न है कि साधारण इकाइयों के बीच स्थानीय संपर्क से ऐसी जटिल सामूहिक बुद्धिमत्ता कैसे बनती है जिसे किसी एक इकाई ने ना तो समझा होता है ना नियंत्रित किया होता है। जॉनसन चीटी बस्तियों, मानव मस्तिष्क, शहरी मोहल्लों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को साथ रखकर इस प्रश्न की जांच करते हैं। उनका तर्क किसी एक अनुशासन का कठोर वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि अलग क्षेत्रों में दिखने वाले साझा ढांचों को पहचानना है। फीडबैक, स्वसंगठन, पड़ोस आधारित संपर्क और अनुकूलनशील सीखना इस ढांचे के प्रमुख तत्व हैं। पुस्तक ऊपर से आदेश देने वाली व्यवस्था और नीचे से उभरने वाली व्यवस्था के अंतर को सरल भाषा में स्पष्ट करती है। इसलिए यह तकनीक के साथ साथ समुदायों, संस्थाओं और इंटरनेट जैसे नेटवर्कों को समझने के लिए भी उपयोगी बौद्धिक प्रवेश द्वार बनती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, समग्र बुद्धिमत्ता और सरल स्थानीय नियमों का सिद्धांत। इमर्जेंस का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि किसी व्यवस्था की सामूहिक क्षमता उसके अलग अलग घटकों की क्षमता जोड़ देने भर से नहीं समझी जा सकती। चींटी अपने स्तर पर सीमित संकेतों का जवाब देती है, फिर भी पूरी कॉलोनी भोजन, रास्तों और काम के बंटवारे से जुड़ा प्रभावी व्यवहार दिखा सकती है। जॉनसन इस उदाहरण से बताते हैं कि सामूहिक व्यवस्था के लिए हमेशा केंद्रीय नेता या विस्तृत मास्टर प्लान आवश्यक नहीं होता। बहुत से एजेंट यदि कुछ सरल नियमों के अनुसार लगातार प्रतिक्रिया दें तो उनके बीच का पैटर्न बड़े स्तर पर सुव्यवस्थित दिखाई दे सकता है। यह दृष्टि व्यक्ति को ही पूरे परिणाम का कारण मानने वाली व्याख्याओं को सीमित करती है, किसी शहर की जीवंतता को केवल मेयर, योजनाकार या बड़े निवेशक से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि निवासियों, दुकानों, सड़कों और रोजमर्रा के निर्णयों का संयुक्त प्रभाव भी निर्णायक होता है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि उभरता परिणाम जादू नहीं है, वह संपर्कों, संकेतों और दोहराई जाने वाली प्रतिक्रियाओं से बनता है। हालांकि ऐसे परिणामों का पूर्वानुमान कठिन हो सकता है, उनके पीछे की परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसीलिए जॉनसन का जोर घटकों को अलग करके देखने के बजाय उनके संबंधों और व्यवहार के नियमों पर जाता है। दूसरा, फीडबैक लूप व्यवस्था को सीखने और बदलने योग्य बनाते हैं। जॉनसन के अनुसार उभरती व्यवस्थाओं की सक्रियता को समझने के लिए फीडबैक लूप केंद्रीय अवधारणा है। फीडबैक का अर्थ है कि किसी क्रिया का परिणाम भविष्य की क्रियाओं को प्रभावित करे। यदि किसी रास्ते पर अधिक चींटियां जाती है और उनके छोड़े संकेत उस रास्ते को अन्य चींटियों के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं तो व्यवहार स्वयं को मजबूत कर सकता है। इसे सकारात्मक फीडबैक कहा जा सकता है। दूसरी ओर, सीमाएं और प्रतिरोध किसी प्रवृत्ति को अनियंत्रित बढ़ने से रोकते हैं जो संतुलनकारी प्रभाव पैदा करते हैं। इन प्रक्रियाओं से व्यवस्था स्थिर भी हो सकती है और नए रूप भी ले सकती है। पुस्तक के शहरी और तकनीकी उदाहरणों में यही तर्क व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। स्थानीय पसंद, उपयोग और प्रतिक्रिया किसी इलाके की पहचान या किसी डिजिटल प्रणाली की दिशा बदल सकते हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि परिवर्तन केवल बाहरी आदेश से नहीं आता, बल्कि व्यवस्था अपने अनुभवों का असर अपने अगले कदमों में शामिल करती है। फिर भी फीडबैक को स्वतः लाभकारी मानना गलत होगा। वही तंत्र उपयोगी समन्वय के बजाय भीड़, असमानता या गलत सूचना जैसे अवांछित परिणामों को भी बढ़ा सकता है। पुस्तक का मूल्य इस समझ में है कि किसी नेटवर्क का मूल्यांकन उसके घोषित उद्देश्य से नहीं, उसके वास्तविक प्रतिक्रिया चक्रों से भी करना चाहिए। तीसरा, चींटियों और मस्तिष्क के माध्यम से विकेंद्रीकृत सीखने की व्याख्या। चींटी कॉलोनी और मस्तिष्क को साथ रखकर जॉनसन यह दिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता केवल एक केंद्रीय नियंत्रक की संपत्ति नहीं है। चींटियों की व्यक्तिगत क्षमता सीमित होती है, लेकिन उनके संकेतों और निकट संपर्कों से कॉलोनी पर्यावरण के अनुकूल निर्णय जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। मस्तिष्क में भी असंख्य न्यूरॉन स्थानीय स्तर पर संकेत लेते और भेजते हैं। किसी एक न्यूरॉन के भीतर विचार, स्मृति या चेतना का पूरा नक्शा नहीं होता, फिर भी उनके विशाल नेटवर्क से उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताएं उभरती है। यह तुलना समानता का शाब्दिक दावा नहीं करती। जैविक प्रणालियों के पैमाने, संरचना और विकास अलग है। इसका उपयोग एक विश्लेषणात्मक ढांचे के रूप में अधिक सार्थक है, जो पूछता है कि स्थानीय सूचना किस तरह फैलती है, कौन से संकेत मजबूत होते हैं और व्यवस्था अनुभव के अनुसार अपना व्यवहार कैसे बदलती है। जॉनसन की प्रस्तुति पाठक को बुद्धिमत्ता को आदेश देने की क्षमता के बजाय पैटर्न पहचानने और प्रतिक्रिया समायोजित करने की क्षमता के रूप में देखने को प्रेरित करती है। इससे यह भी समझ आता है कि किसी जटिल प्रणाली को जानने के लिए उसके सबसे छोटे घटक की जांच पर्याप्त नहीं है, घटकों के बीच संबंधों का घनत्व, संकेतों की गति और समय के साथ बनने वाली संरचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। चौथा, शहरों के मोहल्ले नीचे से ऊपर बनने वाली सामाजिक व्यवस्था है। पुस्तक शहर को केवल इमारतों, नक्शों और प्रशासनिक सीमाओं का संग्रह नहीं मानती। जॉनसन के लिए शहर एक ऐसा अनुकूलनशील तंत्र है जिसमें लोग अपने निकट परिवेश की जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं और इन निर्णयों से बड़े सामाजिक पैटर्न बनते हैं। दुकानें कहाँ खुजती है, किन सड़कों पर आवाजाही बढ़ती है, किसी इलाके की पहचान कैसे बदलती है और पड़ोस का सामाजिक जीवन किस तरह विकसित होता है। इन प्रश्नों का उत्तर केवल औपचारिक योजना में नहीं मिलता, स्थानीय संपर्क और पुनरावृत्त व्यवहार भी निर्णायक होते हैं। इस विचार का अर्थ यह नहीं कि नगर नियोजन या सार्वजनिक नीति निरर्थक है, बल्कि यह चेतावनी है कि ऊपर से बनाई गई योजनाएं स्थानीय ज्ञान, अनौपचारिक नेटवर्क और निवासियों की प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करेंगी तो उनके परिणाम सीमित या अप्रत्याशित हो सकते हैं। शहर का उदाहरण पुस्तक को जीव विज्ञान से सामाजिक विश्लेषण तक विस्तार देता है। यह बताता है कि उद्भव कोई प्रयोगशाला तक सीमित अवधारणा नहीं है। फिर भी जॉनसन की रूपरेखा को सावधानी से लागू करना चाहिए, क्योंकि शहरी जीवन में शक्ति, संपत्ति, कानून और असमानता जैसे तत्व भी परिणामों को आकार देते हैं। स्थानीय स्वसंगठन इन संरचनात्मक प्रभावों को समाप्त नहीं करता। पाठक के लिए मुख्य सीख यह है कि शहर को समझने में नीचे से बनते संकेतों और ऊपर से लागू संस्थागत निर्णयों दोनों को देखना आवश्यक है। मंत में सॉफ्टवेयर और इंटरनेट में उभरती सामूहिक क्षमता की संभावना इमर्जेंट सॉफ्टवेयर को केवल निर्देशों के निष्क्रिय संग्रह के रूप में नहीं देखती। जॉनसन की रुचि उन प्रणालियों में है जहां अनेक उपयोगकर्ता, छोटे सॉफ्टवेयर एजेंट या परस्पर जुड़े संकेत मिलकर ऐसी उपयोगी संरचना बना सकते हैं जिसे किसी एक केंद्र ने पूरी तरह डिजाइन नहीं किया। इंटरनेट की बढ़ती कनेक्टिविटी के संदर्भ में वे ऐसे वेब की संभावना पर विचार करते हैं जो उपयोग संबंधों और बदलते पैटर्नों से अधिक बुद्धिमान ढंग से संगठित हो। यह विचार आज के डिजिटल प्लेटफॉर्मों, अनुशंसा प्रणालियों और सहयोगी ऑनलाइन ज्ञान संसाधनों को समझने में भी प्रासंगिक लगता है, हालांकि पुस्तक इन बात के रूपों का विस्तृत विवरण नहीं देती। इसका मूल सबक यह है कि डिजिटल बुद्धिमत्ता केवल अधिक शक्तिशाली मशीन में नहीं बल्कि सार्थक संपर्कों और प्रतिक्रिया की संरचना में भी हो सकती है। साथ ही विकेंद्रीकरण अपने आप में निष्पक्षता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता। जिस प्रकार फीडबैक उपयोगी संकेतों को उभार सकता है, उसी प्रकार लोकप्रियता पक्षपात या त्रुटि को भी बढ़ा सकता है। इसलिए जॉनसन का तकनीकी दृष्टिकोण अंधे उत्सव से अधिक एक वैचारिक प्रस्ताव है। वह डिजाइनरों और पाठकों को यह पूछने के लिए कहता है कि किसी नेटवर्क में कौन से स्थानीय नियम है, किसकी भागीदारी दर्ज होती है और सामूहिक परिणाम किन प्रोत्साहनों से निर्मित हो रहे हैं। निष्कर्ष में इमर्जेंस उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो विज्ञान, तकनीक, शहरों, इंटरनेट और सामाजिक व्यवहार के बीच संबंधों को एक साझा दृष्टि से देखना चाहते हैं। इसे पढ़ने के लिए जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान या शहरी अध्ययन की औपचारिक विशेषज्ञता जरूरी नहीं है, क्योंकि जॉनसन जटिलता के विचारों को उदाहरणों के सहारे सुलभ बनाते हैं। विद्यार्थियों, उत्पाद डिजाइनरों, नीति और समुदाय से जुड़े पेशेवरों तथा नेटवर्क आधारित दुनिया को समझने वाले सामान्य पाठकों को इससे उपयोगी वैचारिक भाषा मिल सकती है। व्यावहारिक लाभ किसी निश्चित प्रबंधन विधि में नहीं बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने में है। किसी समस्या को देखते समय पाठक केंद्रीय निर्णयकर्ता के साथ स्थानीय व्यवहार, प्रतिक्रिया चक्र, सूचना प्रवाह और अनपेक्षित परिणामों को भी जांचना सीखता है। बौद्धिक रूप से पुस्तक की ताकत इसके अनुशासन पार करने वाले ढांचे में है। कई जटिलता संबंधी पुस्तकें गणितीय मॉडल या अत्यधिक तकनीकी विवरण पर केंद्रित रहती है, जबकि जॉनसन चींटियों, मस्तिष्क, शहरों और सॉफ्टवेयर के बीच सहज तुलना बनाकर अवधारणा को सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ देते हैं। यह व्यापकता इसकी विशिष्ट पहचान है। फिर भी इसे उद्भव का अंतिम वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं समझना चाहिए। इसकी उपयोगिता जटिल व्यवस्थाओं की पूरी भविष्यवाणी करने में नहीं बल्कि यह पहचानने में है कि छोटे संपर्क कभी कभी बड़े परिणाम रचते हैं। इसी संतुलित दृष्टि के कारण यह पुस्तक लोकप्रिय विज्ञान और तकनीक विमर्श में अलग स्थान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीवन जॉनसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।